Medical Wing of Brahma Kumaris presents Empowering Medical Minds.
आज का वर्तमान समय हम सभी के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो या चाहे किसी और प्रोफेशन के हो, हर किसी के लिए डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है। और ऐसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग समय में अपने मनोबल को बढ़ाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्राइसिस के समय में अगर हमारा मनोबल टूटता है, मनोबल में कोई कमी आती है, तो लॉस नुकसान बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो हमारा मनोबल ऊंचा रहे, हम अपने मनोबल से दूसरों को भी शक्ति प्रदान करें, यही सुभावना के साथ हम आज अपने बात की शुरुआत करने जा रहे हैं और अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा करेंगे। दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं हमारे भारत में, मिर्जा गालिब। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध शायरी है, मैंने कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर लिया, मैंने कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध शायरी है ये, लेकिन जब हम अपने दोस्तों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, कॉलीग के साथ, जूनियर्स के साथ इसको हम शेयर करते हैं, तो बहुत प्यार से हमको कहते हैं, साहब ये तो सुनने में, सुनाने में, किताबों में और ताली बजवाने में अच्छी लगती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो दोस्तों, इसमें एक लाइन हम और जोड़ना चाहेंगे, ताकि जो डिफिकल्टीज आपको लगती है वो सहज हो जाए, अपने मनोबल को आप बढ़ा सके और डिफिकल्ट टाइम में, टेस्टिंग टाइम में आप उन चैलेंजेस का सक्सेसफुली सामना कर सके। तो मैंने कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो अगली लाइन इसमें है दोस्तों, किसी को सहयोग दे दिया और जरूरत पड़ने पर किसी का सहयोग ले लिया, जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाए। इसी पर दोस्तों मुझे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी याद आती है, वो कहानी है कछुआ और खरगोश की। आप सभी ने बचपन में जरूर सुनी होगी, स्कूल टाइम में जरूर सुनी होगी और उसका लेसन भी आपको याद होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो दोस्तों, इस कहानी में एक पक्ष को हमने देखा कि कछुआ धीरे धीरे और निरंतर चलता है, रेस जीत जाता है। खरगोश बीच में आलस्य कर जाता है या थक जाता है या केयरलेस हो जाता है तो रेस हार जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, वो हमें जानने और समझने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, एक तेज चलने वाला खरगोश, कछुए से इंटेलिजेंट ज्यादा खरगोश, चंचल ज्यादा खरगोश, और अगर कछुए जैसे जानवर से रेस हार जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी, आप सोच के देखिए। उसको रात में नींद नहीं आई होगी, वो बहुत बेचैन होगा, वो सोच रहा होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बहुत तेज दौड़ने वाला, बहुत होशियार, देखो आज एक छोटे जानवर कछुए से हार गया। तो दोस्तों, खरगोश को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन अच्छी बात यह होती है खरगोश के साथ कि वो गलत आदतों का शिकार नहीं हो जाता। कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, इवन कई बार तो लोग ऐसे सदमे को सहन नहीं कर पाते, सुसाइड की तरफ भी कदम बढ़ा लेते हैं दोस्तों। लेकिन खरगोश होशियार था, उसने कहा नहीं, मुझे फिर से रेस करनी चाहिए। तो अगले दिन वो फिर से कछुए को चैलेंज करता है और कछुआ सोचता है कि हम जीत ही जाएंगे, लेकिन इस बार खरगोश वो गलती नहीं करता जो पहली बार कर चुका होता है। इस बार कौन जीतता है, जरूर वो खरगोश जीता होगा। अब आप सोच के देखिए, फिर कछुए का क्या हाल हुआ होगा। अब कछुआ सोच रहा है, मैं क्या बताऊंगा सोसाइटी वालों को, क्या पहली बार में चीटिंग करके जीता था, उसको रात भर नींद नहीं आती, उसको भी बेचैनी होने लगती है, लेकिन वो गलत रास्ते पर नहीं जाता है, वो डिप्रेशन में नहीं जाता, सुसाइड नहीं करता, वो कोई नशे की आदत अपने जीवन में नहीं पालता। नेक्स्ट टाइम वो खरगोश को पुनः चैलेंज करता है और खरगोश को कहता है कि इस बार जो रूट होगा हमारे रेस का वो डिफरेंट होगा। अब खरगोश सोचता है कि ठीक है, एक बार हमने आलस्य कर दिया, जीवन में हर बार थोड़ी करते रहेंगे, तो उसने बिना सोचे समझे पुनः रेस को स्वीकार कर लेता है। लेकिन इस बार जो रूट था दोस्तों वो नदी के रास्ते से था। तब आप समझ गए होंगे कौन जीता होगा इस बार। इस बार पुनः कछुआ रेस जीत जाता है। दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपसे शेयर करेंगे कि झुकना हमेशा बुद्धिमान लोगों को ही पड़ता है। तो खरगोश बुद्धिमान होता है, वो बुद्धिमानी से फैसला करता है कि क्या हम सारा जीवन सारी जिंदगी यही करते रहेंगे क्या? जीत गए तो भी उसका सुख नहीं मिल रहा है, हार गए तो स्वाभाविक सी बात है रात भर नींद गायब है, चैन नहीं, आखिर हम सारा जीवन क्या यही करते रहेंगे? तो उसके मन में एक नया प्लान आता है। कछुए को पुनः कहता है कि चलो हम इस बार नए तरीके से रेस करेंगे, रूट वही होगा, हम दोनों वही होंगे, पर तरीका हमारा दूसरा होगा रेस करने का, जिसमें किसी की हार ना हो। तो दोस्तों समझ गए होंगे ना क्या तरीका अपनाया होगा उन्होंने। खरगोश ने कछुए को कहा कि देखो, जब तक हम नदी पर पहुंचे तो हमारी पीठ पर बैठ जाना, और जब नदी क्रॉस करना हो तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, और जब नदी क्रॉस कर लेंगे तो फिर तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। तो दोस्तों आप हमें ये बताएं कि इस आखिरी रेस में हार किसकी होती है? किसी की नहीं होती। जीत किसकी होती है? दोनों की जीत होती है। अब इस कछुए और खरगोश के कहानी के चारों पार्ट्स को अगर आप एनालाइज करें तो आप भी ये पाते होंगे, आप भी ये अनुभव करते होंगे कि जो चौथी कहानी है जिसमें दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, अपने गुणों से कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, किसी को हराने के लिए, किसी से जीतने के लिए नहीं, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए सहयोग करते हैं, तो दोनों जीवन में अपने खुश रहते हैं, दोनों के जीवन में शांति और आनंद रहती है, और दोनों अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। तो ऐसे ही चाहते हैं ना कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, हम सभी मंजिल पर पहुंचे और साथ में जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद भी बना रहे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन के इस दौड़ में हमारी उम्र बीत जाती है, खरगोश जैसे हम 60 साल के भी हो जाते हैं, और ऐसा करते करते कई बार हम कई शारीरिक लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स लाइक इरिटेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया आदि कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं हम। तो सोचिए ये बीमारियां भी हमें ग्रसित कर लेती हैं और जीवन में सुख शांति चैन आनंद भी नहीं होता है। तो जरूर आपको चौथी कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। तो आइए हम आप सभी के साथ सक्सेस अर्थात अचीवमेंट्स कि क्या पैरामीटर्स होते हैं, कब कहेंगे हम सक्सेसफुल हो गए, कब कहेंगे हमने अचीव किया जीवन में, उसकी सात बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। मुस्कुराहट एक ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन है दोस्तों, खुशी एक ऐसा इमोशन है दोस्तों जो खुद भी बहुत सारी नकारात्मकता को आपके अंदर से समाप्त कर देता है, और जो आपको देखता है, जो आपके सामने आता है, उसकी भी बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारे उसकी बुरी भावनाएं, बहुत सारी समस्याएं आपको देखते ही नष्ट हो जाती हैं, और चारों तरफ पॉजिटिविटी का क्या हो जाता है, संचार हो जाता है। तो वो सोचता है मन में, आखिर इसने क्या अचीव किया जीवन में जो आज अंदर से खुश है। दोस्तों एक होता है ठहाके लगाकर हंसना, लाफ्टर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो मोमेंटरी होता है, जब तक हम कुछ ऐसी बातें करते हैं तो खूब जोर जोर से हंसते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लेकिन हमने इंटरनली कुछ चीजें प्राप्त की हैं, वो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट स्माइल उससे रिफ्लेक्ट होती है। तो पहली बात जो हमारे सक्सेस को डिफाइन करती है दोस्तों, वो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट स्माइल स्माइल एंड स्माइल। दूसरी बात दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम सफलता के शिखर पर आगे बढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उस मंजिल पर पहुंचते हैं, तो हमारे मन में हैट्रेड, जिलसी, अनहेल्दी कंपटीशन, लेग पुलिंग, इस तरह की फीलिंग्स भी आने लगती हैं। तो हम सफल होते हुए भी अंदर से हम वो खुशी वो आनंद की अनुभूति नहीं करते हैं। तो अगर हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में एक यूनिटी होगी, हमारे मन में एक स्थिरता होगी, और वो यूनिटी बाहर भी दिखाई पड़ेगी। हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकेंगे, या जो हमसे पहले से जुड़े हुए लोग हैं वो हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे और हमारी संगठनात्मक शक्ति को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सफलता की दूसरी निशानी है दोस्तों यूनिटी। जितना यूनाइट हम होकर के आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम ऊंचे से ऊंची सक्सेस या अचीवमेंट्स अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कंडीशन या सिचुएशंस, कई बार हम दूसरों से तुलना करते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, या भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। मुझे याद है, मैं अपने बचपन की एक बात आप सभी से शेयर करूंगा। मैं गांव का रहने वाला था और बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो आजकल गांव में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, वो कहा करता था कि मैं बहुत गरीब हूं और गरीबी के कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, और इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। और मैं देख रहा हूं कि आज 39-40 साल की उम्र में भी वो आज बेरोजगार है। अब मैं अब देखता हूं, उसको तुलना करता हूं, तो हमारी और उनकी परिस्थिति बचपन में लगभग लगभग समान थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमको ये बात अपने ऊपर हावी नहीं होने दी, हमको इनकरेज किया, हमको आगे बढ़ाया, और हम धीरे धीरे उस मानसिकता से बाहर निकले। तो दोस्तों, सिचुएशन एंड कंडीशन भी सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक हाउसवाइफ के लिए सफलता है वो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करे, अपने घर को अच्छे से संभाल करे, और घर में अगर कोई आए तो उसको सुख का आनंद का अनुभव हो। एक फादर होने के नाते उनके रिस्पांसिबिलिटी, उनके सक्सेस, उनकी अचीवमेंट्स अलग हैं। एक स्टूडेंट्स होने के नाते, जैसे आप सभी मेडिकल स्टूडेंट होंगे, तो आपके लिए हम अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छे मार्क्स ले आए, ये चीजें अचीव करें, आपके लिए ये सक्सेस के पैमाना है। एक रिक्शा पुलर है तो उसको दो रोटी मिल जाए शाम को, आराम से अपना पेट भर सके, अपने बच्चों को दो रोटी खिला सके, रात को चैन की नींद सो सके, उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस के लिए सबके पैमाने अलग अलग हैं, लेकिन फीलिंग्स दोस्तों सबकी एक जैसी ही होगी। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करेक्टर, हमारा चरित्र, हमारी वैल्यूज जो हमारे भारत में हमारे सोसाइटी ने हमें सिखाई है। कहा जाता है कि अगर धन चला गया कोई बात नहीं, अगर हमारी नींव मजबूत है, हमारा रूट हमारा जड़ मजबूत है, तो पुनः हम बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा रूट कमजोर है, जिसको हम वैल्यूज कहते हैं, करेक्टर कहते हैं, अगर वो हमारा कमजोर है, तो बार बार बिल्डिंग बनाते भी वो बिल्डिंग बार बार गिर जाएगी, और हम अपना सारा जीवन बनाने में ही लगाते रहेंगे, कभी वो स्थिर मिल नहीं पाएगी दोस्तों। तो वैल्यू सिस्टम, करेक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी बात शेयर करेंगे, मान लीजिए हमने किसी के साथ चीटिंग करके, किसी को लेग पुलिंग करके, किसी के साथ कुछ करके, झूठ बोल करके, हम वो अचीवमेंट्स हासिल भी कर लेते हैं, वो मेडल अगर हमको मिल भी जाता है, तो थोड़ी देर के लिए हमारे लिए तालियां बजेंगी, वाह वाह होंगी, लेकिन असली बात तो आपको पता है ना दिल में क्या है, तो वो आपको सारा जीवन खाती रहेगी। तो दोस्तों, आप भले आप दुनिया की नजर में बहुत बड़े अचीवर्स हैं, लेकिन आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से सुख और शांति नहीं है, आप अंदर ही अंदर परेशान और बेचैन है। तो करेक्टर अर्थात वैल्यू सिस्टम दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम देखते हैं हमारे युवा पीढ़ी अनहेल्दी कंपटीशन में बहुत जल्दी अचीव करने के लिए बहुत तरह तरह के साधन अपनाते हैं, लेकिन वो कई बार अपने उस वैल्यू सिस्टम को छोड़ देते हैं जो सोसाइटी, समाज या एज ए ह्यूमन बीइंग हमें उस सिस्टम पर खरा उतरना चाहिए। तो चरित्र नहीं जाना चाहिए, अगर वो हमारा टिका हुआ है तो हम सफलता की अनलिमिटेड हाइट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा रूट मजबूत है। दोस्तों, एंथुसियाज्म, आपका कार्य में मन लगना, जैसे आप विद्यार्थी हैं आपका पढ़ाई में मन लगना, आप एक फार्मर हैं आपको फार्मिंग के काम में मन लगना, आप एक वेजिटेबल वेंडर हैं तो वेजिटेबल वेंडिंग के काम में मन लगना, या आप एक मेड हैं काम कर रहे हैं कहीं पर तो उस काम में मन लगना। तो एंथुसियाज्म अंदर से, वो एंजॉयमेंट उस कार्य को लेकर के, उदाहरण के तौर पर दोस्तों कैसे हम अपने कार्य को एंजॉय करें, जब भी आपको ऐसा मन में आने लगे तो समझिए कि वो कार्य आपके लिए सहज है और बहुत जल्दी आप सफलता के उस हाईएस्ट मुकाम तक पहुंचने वाले हैं। आप देखते हैं कई लोग स्काई डाइवर्स होते हैं, कई बार लोग सर्फिंग करते हैं समुन्द्र में, कितना डिफिकल्ट होता है, कितना उनके लिए मुश्किल होता है, हमको लगता है कैसे कर रहे होंगे, लेकिन वो इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, वो बार बार करने का उनका मन करता है। अब हम लोग डर रहे होते हैं, तो किसी भी काम में जो भी आपको मिला हुआ है, जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें एंजॉयमेंट आपको आने लगा, आपने उस काम को आनंदित होकर आप करने लगे, तो समझना चाहिए कि आप सफल हैं और सफलता के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उस काम से बोर नहीं होंगे और वो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, सिंप्लिसिटी, कई बार लोग कहते हैं, मुझे याद है बचपन में सिंप्लिसिटी के लोग बहुत बात करते थे पर मुझे सिंप्लिसिटी की समझ नहीं थी। दोस्तों, सिंप्लिसिटी की एक बहुत सुंदर परिभाषा हम अपने अनुभव से आप सभी के साथ शेयर करते हैं। बचपन में मेरे एक फीलिंग होती थी, शायद वो हमारे ना समझी के कारण होती थी, कि बड़े लोग जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, उनके विचार बदल जाते हैं, लेकिन हमने ये अनुभव किया कि वो तो वैसे ही होते हैं, लेकिन हमारे विचार और हमारी भावनाएं उनके प्रति लेके बदल जाती हैं। तो जैसे दोस्तों कोई भरपूर भरा हुआ वृक्ष होता है, वो झुक जाता है, कोई भी उस फल का लाभ ले सकता है, तो वो उसकी सिंप्लिसिटी कहलाई जाती है। सबके साथ वो मिलजुल सके, सब कोई उसके साथ अपनी बात शेयर कर सके और वो सबको अपनी बात सरल भाषा में कह सके। तो सिंप्लिसिटी, जितना हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके साथ साथ अगर हमारे अंदर सिंप्लिसिटी भी आती है तो समझना चाहिए कि हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, सेटिस्फैक्शन। हमने सब कुछ कर लिया जीवन में, बहुत हाइट तक पहुंच गए, बहुत मेडल्स हमने अचीव कर लिए, लेकिन अगर हम जीवन में संतुष्ट नहीं है तो सब होकर भी लगेगा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो सक्सेसफुल व्यक्ति, अचीवमेंट्स वाला व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट होगा। हमारे भारत में एक कहावत है, वो मुझे ठीक से याद नहीं है, फिर भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, गज धन बाज धन गो धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो दोस्तों ये सात बातें ये हम अपने अनुभव के साथ आपसे शेयर कर रहे हैं, हम पुनः रिपीट करते हैं, चाहे आप नोट भी कर सकते हैं, जब कभी आप दिशा भ्रमित हो जाएं, जब कभी आपके मन में दुविधा हो तो उसको आप पुनः रिवाइज कर सकते हैं। तो पहली बात कौन सी, भूल गए ना, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। दूसरी बात, यूनिटी इनसाइड द माइंड, बाहर भी यूनिटी। तीसरी बात कौन सी, कंडीशन सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस। चौथी बात, करेक्टर। पांचवी बात, एंजॉयमेंट। छठवीं बात, सिंप्लिसिटी। और सातवीं बात, सेटिस्फैक्शन। संतुष्टता का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये नहीं है कि हम जीवन में आगे नहीं बढ़े। संतुष्टता का मतलब है कि जो भी हमारे पास हमारी मेहनत से हमको प्राप्त हुआ है वही हमारे लिए बेस्ट है और हम उसी के लिए सुटेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है किसी चीज की और मुझे वो पोस्ट दे दी जाती है जिसके लिए मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम उस पोस्ट का ईमानदारी के साथ अनुपालन नहीं कर पाएंगे और हमारा भी नाम बदनाम होगा और जिस सोसाइटी ने हमको पोस्ट प्रदान की उस सोसाइटी का भी नाम बदनाम होगा। दोस्तों, तो हमारी काबिलियत, हमारी हिम्मत या हमारे पुरुषार्थ के अनुसार जो भी मुझे वर्तमान में प्राप्त है वही हमारे लिए बेस्ट है, ऐसी भावना के साथ हम जीवन में आगे बढ़े, जिसको हम संतुष्टता कहते हैं। तो दोस्तों, ये बातें आपको जरूर अच्छी लगी होंगी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन चीजों को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें, कैसे अचीव करें, तो उसमें हम कुछ बातें आपके साथ जरूर साझा करेंगे। कई बार हमने देखा है, मुझे याद है जब मैं एमडी कर रहा था, लगभग आज के 12-13 साल पहले की बात है, तो जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके बाहर कुछ काम चल रहा था। वहां पर एक मजदूर, चूंकि मैं राजयोगा मेडिटेशन अपने कॉलेज के टाइम से कर रहा हूं तो मैं सुबह उठ जाया करता था 4 बजे, तो जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलता था तो मैं देखता था वो मजदूर 4 बजे भी गिट्टी खूट रहा है, और रात में लगभग 10:30-11 बजे मैं सोया करता था तो सोने से पहले भी मैं देखता था कि गिट्टी खूट रहा है। तो मैं सोचता था ये मजदूर सोता कब है, कितनी मेहनत करता है ये। तो दोस्तों, उस कार्य के प्रति उसकी समर्पणता थी, उसके जीवन की आवश्यकता और उसकी समर्पणता उसको मोटिवेट करती थी दिन रात मेहनत करने के लिए, एफर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर जीवन में हम सक्सेस होना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, कुछ बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस कार्य के प्रति समर्पणता बहुत जरूरी है। हम ब्रह्मा कुमारीज भाई बहनों, जब पहली बार संपर्क में आए ब्रह्मा कुमारीज के, तो मैं कहते थे ये समर्पित भाई है, ये समर्पित भाई होकर के सेवा करते हैं। अब मेरे समझ में आया, क्योंकि समर्पण माना उनके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मानवता की सेवा करना। तो पूरे तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से वो मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों, उसी प्रकार आपने भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य लिया होगा, आपने भी कुछ लक्ष्य बनाया होगा, तो समर्पण, उस लक्ष्य को लेकर के समर्पण मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम चेक करें। दोस्तों, मुझे याद है, या आप सभी अनुभवी होंगे इस बात के, जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सब एक ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को शुरू करने के साथ और डिग्री लेने तक आप देखते हैं सब नंबर वाइज हो जाते हैं। कोई मेडल ले आता है, कोई गोल्ड मेडल ले आता है, कोई फेल हो जाता है, कोई सेकेंड डिविजन पास होता है, लेकिन पढ़ाई सब वही कर रहे होते हैं, पढ़ाने वाले भी वही होते हैं, सब्जेक्ट्स भी वही होते हैं दोस्तों, और इंस्टीट्यूशन भी वही होता है, और पढ़ाई लिखाई का माहौल भी वही होता है, लेकिन आप देखते हैं रैंकिंग कैसे हो जाती है, नंबर वाइज हो जाती है। उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है अपने लक्ष्य को लेकर के समर्पित होना। जो जितना समर्पित होगा अपने लक्ष्य को लेकर के, वो उतना उस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो हमें चेक करना है, अगर हम अपने जीवन में मन चाहा रिजल्ट नहीं पा रहे हैं या मुझे नहीं मिल रहा है, तो अपने आप से पूछना है, क्या मैं सचमुच अपने कार्य के प्रति समर्पित हूँ या बस मैं लोगों से शिकायत कर रहा हूँ। तो चेक करना है दोस्तों, सरेंडरनेस या समर्पणता हमारे कार्य को लेकर के हमारे अंदर कितनी है। दूसरा, दोस्तों, आज हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बहुत साधन है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो इन साधनों के भाग दौड़ में शायद हम अपने आंतरिक मन को, अपनी आंतरिक शक्ति को समय नहीं देते हैं, और हमको लगता है शायद हम अपने लिए समय दे रहे हैं। दोस्तों, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे वो अपने भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, हमारे देश के राष्ट्रपति भी हुए, वो हम सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन आप देखें, उनको साइलेंस पसंद था। उसी प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, हम सभी जानते हैं, उनको भी साइलेंस पसंद था। साइलेंस माना इंटरनल वर्ल्ड। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमको आ रही है आगे बढ़ने के लिए, अगर उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में उसका कारण ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा समय निकाल करके, अंतर्मुखता की गुफा में जा करके, थोड़ा हम इंट्रोवर्ट होकर के अपने आप से पूछे, शायद हम यही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, आज के बाद और अभी से आप थोड़ा सा समय निकाल करके अपने आप को जरूर देना, जो भी आपकी मन की क्वेरीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसका हल भी मन के अंदर है। इसको हम सागर कहते हैं, समंदर कहते हैं। तीसरी बात दोस्तों, लव एक ऐसा शब्द है, प्रेम, चाहे वो माता पिता बच्चों के बीच में प्रेम हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे वो किसी रिलेटिव के साथ हो, किसी के साथ भी प्रेम हो। और प्रेम एक ऐसा डिवाइन वर्च्यू है जो हमारे मन को बहुत शांत, बहुत आनंदित कर देता है। दोस्तों, हम दूसरों से प्रेम तो करते हैं, दूसरों का हाल चाल तो हम लेते हैं, दूसरे दोस्तों को खूब मैसेज करेंगे, और कैसे हो, गुड मॉर्निंग, रात में सोया नहीं सोया, नाश्ता किया नहीं किया, आराम किया नहीं किया। दोस्तों, कभी आपने अपने से पूछा, कभी आपने अपने से भी अपना हाल चाल पूछा? नहीं पूछा ना। तो आज से कम 3 बार ये एक्सरसाइज आप सभी जरूर करना, अपना हालचाल पूछना। हमारे पास बहुत कुछ है, अभी मैं आपको गिनाऊंगा कि संसार का सबसे धनवान व्यक्ति कौन है, तो आप सोचेंगे बिल गेट्स, ऐसे कुछ नाम गिनेंगे, लेकिन मैं कहता हूं संसार का सबसे धनवान व्यक्ति अगर कोई है तो वो आप हैं। अगर आप अपने आप को देखें, अपनी आंखों को देखें, अपने हाथों को देखें, अपने शरीर में काम कर रही दोनों किडनी को देखें, अपने पेट को देखें, अपने ब्रेन को देखें, सभी स्वस्थ हैं, सभी अच्छे से काम कर रही हैं, कितनी कीमत लगाएंगे आप इनकी? तो ऑलरेडी दोस्तों, आप बहुत धनवान हैं, आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तियों में हैं। लेकिन धन हमारे पास है तो इसको सुरक्षित रखना, इसकी देखभाल करना, इसको सही तरीके से यूज करना ही स्वयं को प्यार करना कहा जाता है, स्वयं को स्नेह करना कहा जाता है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। दोस्तों, तो आपके पास तो दो दो हाथ है, तो कितना अच्छा आपका भाग्य हो गया। और जिसके हाथ में एक ही रेखा होती है भाग्य की, तो भी अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं। तो आपके हाथ में कितनी रेखाएं हैं, अभी मैं गिनने के लिए कहूंगा तो समय कम हो जाएगा, इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि आप कभी नेक्स्ट टाइम हमें गिन करके बता देना कितनी रेखाएं आपके हाथ में हैं। लेकिन इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि आपके दोनों हाथ भी हैं और आपके हाथ में अनगिनत रेखाएं भी हैं। तो क्यों ना हम दोनों हाथ से अपने रोज पीठ थपथपाएं और अपने आप को स्नेह करें, अपनी शक्ति बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा बढ़ाएं। दोस्तों, मैं आजकल विद्यार्थियों को देखता हूँ, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर्स हों, कोई भी हो, हम अपने को प्यार नहीं करते। हम कह रहे तुम तो बेकार हो, तुम तो होपलेस हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। अरे जब मैं किसी काम का नहीं, दुनिया में कौन मेरे काम आएगा दोस्तों? तो जरूर आज के बाद और हमेशा के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके अपनी भी पीठ थपथपाया करिए और कहा करिए, मैं संसार में यूनिक हूं, मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है, तो मुझे दूसरों से काहे की तुलना करना, काहे का कंपैरिजन? तो दोस्तों, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। तो लव योरसेल्फ, और जितना आप स्वयं को प्यार करेंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। आपके पेरेंट्स ने कभी आपके सर पे हाथ रखा होगा, मेरा बच्चा, लाडला बच्चा, आप फील करें आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने आप को भी हमें प्यार करना है, अपने आप को भी अप्रिसिएट करना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरे साथ सभी बोलेंगे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अपनी पीठ भी थपथपाते रहें तो आप देखेंगे जिस दिन से आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर देंगे उस दिन से लोग भी आपको प्यार करना, प्यार से बात करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, लव योर सेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोकस्ड होना, मुझे याद है जब मैं MBBS मिनी प्रॉफ में था तो लोग PG एंट्रेंस की तैयारियां शुरू कर देते हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर सेलेक्ट भी होते हैं, वो अपने अपने अनुभव से हमें सलाह और राय भी देते हैं। तो हमने देखा है कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, 5 दिन जो उसने सलाह दी उस सलाह पे चल रहे हैं, 10 दिन दूसरे ने जो सलाह दी उस सलाह पे चल रहे हैं, महीना भर जो तीसरे ने सलाह दी उस सलाह पे चल रहे हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। और वो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। हाँ, हमें दूसरों से गुण उठाना चाहिए, दूसरों की विशेषताओं को उठाना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संसाधन है, उसी संसाधन को लेकर के ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम यूनिक हैं, हमारे जैसा दूसरा नहीं, दूसरा भी यूनिक है, मैं उसके जैसा नहीं। तो हमें फोकस्ड होना है, हमें अपने आप को फोकस रखना है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। जैसे आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल भगवान हमें प्रदान करते हैं, हम फिर से टाइप करते हैं, आजकल तो टाइप भी नहीं करते, बस मुंह से बोल देते हैं हाजिर हो जा, तो वो हाजिर हो जाता है, कोई समय नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारे सामने आ जाते। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए फोकस्ड रहना है हमें। तो जितना हम फोकस्ड होंगे उतना हम अपने मंजिल पर जल्दी से और सहजता से पहुंच सकेंगे, वो रास्ता हमें क्लियर दिखेगा, वो विजन हमारे मन में क्लियर होगी, तो हमें पहुंचना वहां तक आसान होगा। दोस्तों, कई बार हम सफल नहीं हो पाते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई बार हम दूसरों को सहयोग देते हैं पर हमें दूसरों से अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिलता है, उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो हम आशा खो देते हैं, उनके लिए हमारे मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है दोस्तों। तो कई बार हम एक्सपेक्टेशन, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, कई बार हम अपने साथ भी रख लेते हैं और दूसरों के साथ भी रख लेते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल नहीं होती है तो हम होपलेस हो जाते हैं। दोस्तों, हमें लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन साथ साथ हमें रियलिस्टिक भी बहुत होने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में ही जीते रहे, हम रियलिस्टिक ना हो। तो दोस्तों, अपने से क्या एक्सपेक्टेशन है, दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन है, या दूसरे हमारे कौन सी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझ करके चलना। कई बार हमने यंग स्टूडेंट्स में देखा है, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन शायद दोस्ती अपेक्षाओं पर आधारित होती है, एक्सपेक्टेशन पर आधारित होती है, और जब एक्सपेक्टेशन हमारे फुलफिल नहीं होते हैं तो हमारी फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो जाता है दोस्तों। और ब्रेकअप कई बार उसका जो इंड होता है बहुत टेरिबल होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी यंग होने के नाते जानते और समझते हैं। तो एक्सपेक्टेशन, क्या हमें अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्या दूसरों से रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दूसरा जो हमने एक्सपेक्टेशन रखी है वो हमेशा फुलफिल ही कर सकता है, मान लीजिए नहीं किया तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरों के सहारे ही आगे बढ़ना चाहें, नहीं, हमें अपना पैर बाहर भी निकालने की जरूरत है, अपने आप को इंडिपेंडेंट भी बनाने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर दूसरों का सहयोग लेने की भी जरूरत है। दोस्तों, टीम वर्क भी बहुत जरूरी होता है। जैसे आप क्रिकेट टीम की बात करते हैं, उसमें हर किसी प्लेयर का अपना अपना रोल होता है। यहाँ पर टीम वर्क से हमारा तात्पर्य यह है दोस्तों कि हर किसी की विशेषता को हमें रिस्पेक्ट करना है। जैसे आपको कभी अगर फ्लाइट से फॉरेन जाना हो तो आपको पायलट भी चाहिए, आपको एरोप्लेन भी चाहिए, उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। तो टीम वर्क माना हम हर किसी के विशेषताओं को देखते हुए, उनकी विशेषताओं को प्रशंसा करते हुए, उनकी विशेषताओं को उपयोग में लाए तो वो भी हमसे खुश रहेंगे और हम भी उनसे खुश रहेंगे। उनसे हमें अप्रोप्रिएट सपोर्ट भी मिल जाएगा और हम जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, एंथुसियाज्म, आपने एंजॉयमेंट समझा, कार्य को आनंद लेना है, लेकिन एंथुसियाज्म भी हमारे जीवन में चाहिए। हम आपको इसके लिए एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने महाभारत में वो चीज देखी है नहीं देखी है, पर बहुत फेमस है। आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, आपने उसकी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और आपने महान धनुर्धर एकलव्य का नाम भी सुना होगा। दोस्तों, एकलव्य का नाम आप गुरु के प्रति समर्पण भाव को लेकर के सुनते होंगे। आप जानते हैं कि जो एकलव्य के गुरु थे, उन्होंने अपना शिष्य बनाने से उन्हें इनकार कर दिया था, लेकिन एकलव्य के अंदर अपने गुरु को लेकर के महान श्रद्धा थी, अपने उस लक्ष्य को पाने की चाह थी। उसने अपने अंदर एंथुसियाज्म भरा, उस लक्ष्य को देखा और गुरु को ही आदर्श मानकर उस मंजिल तक पहुंचा। और लोग तो कहते हैं कि वो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर हुआ था। दोस्तों, एकलव्य हमारे सामने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जो ये कहते हैं कि हमारे पास अच्छा टीचर नहीं है, हमको बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो हम क्यों ना उसकी शिक्षाओं को उसकी अनुपस्थिति में भी रोल मॉडल मानकर अपने एंथुसियाज्म को बढ़ाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा, अर्जुन की तरह अगर आप देखेंगे तो उनके जो गुरु थे, सिर्फ अर्जुन को ही ट्रेनिंग नहीं दी, अर्जुन के साथ बहुत सारे उनके भाई भी थे, कौरवों के बहुत सारे उनके दोस्त और भाई थे, लेकिन अर्जुन के अंदर जो समर्पणता थी सीखने की, जो लगन थी सीखने की, गुरु के प्रति जो श्रद्धा भावना थी, और किसी में नहीं थी। तो अर्जुन अपने अंदर एंथुसियाज्म क्रिएट करके उसको सीखा। और जितना हम सीखना चाहते हैं, गुरु हमें उतना ही सिखाना चाहता है। दोस्तों, हम नहीं सीखना चाहेंगे तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं सिखा सकती। हम भले दुनिया की ताकतों को ब्लेम करते रहे दोस्तों, तो अगर हम अचीवर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने अंदर एंथुसियाज्म क्रिएट करें और कुछ सीखने की तमन्ना डेवलप करें। तो अगर हमारे पास वो टीचर नहीं भी है, वो फैसिलिटी नहीं भी है, तो आपके अंदर जो उमंग है आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। दो बातें हम और शेयर करेंगे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज भाग दौड़ की जिंदगी में हमारी जो युवा पीढ़ी मिस कर रही है, थोड़ा सा रुझान हम देख रहे हैं कुछ समय से हुआ है, वो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। मैं एक बात अपने युवा पीढ़ी से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे याद है, मैं अपनी बात आपसे शेयर करूंगा, जब हम 12th क्लास के बाद कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो ज्यादातर विद्यार्थियों की दिनचर्या स्कूल टाइम में रेगुलर होती है। समय से सोना, समय से उठना, सुबह स्कूल जाना, नाश्ता करना समय से, लंच करना टाइम से, रात में टाइम से डिनर करना और सो जाना। लेकिन जैसे हम कॉलेज में कदम रखते हैं तो हमारी सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। रात भर जगना, दिन में सोना, सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करना, लंच देर से करना, लंच नहीं करना, डिनर रात में 2 बजे करना, ऐसे हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि हम अपने तन का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं और मन का ध्यान कहाँ से रख पाएंगे। दोस्तों, तो हम एक सलाह आप सभी को जरूर देना चाहेंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ठीक होना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज दो तरीके की होती है दोस्तों, एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है और एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर हम 15 से 20 मिनट, चाहे योगा हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रनिंग हो, हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं। हम अगर बाहर नहीं निकल सकते तो घर में भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली ओपन एरिया में करें, प्रेफरेबली लॉन हो कहीं पर, घास हो वहां पर करें, तो वो हमारे फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छी रखती हैं, बहुत बढ़िया रखती हैं। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट हफ्ते में 5 दिन 7 दिन करें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर हफ्ते में 5 दिन भी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, हम एक्टिव रहेंगे। क्योंकि सारा मेहनत हम कर किस लिए रहे हैं दोस्तों, हम इतनी पढ़ाई, इतना व्यापार, इतना बिजनेस, सब किस लिए कर रहे हैं? स्वस्थ रहने के लिए तो कर रहे हैं, और अगर हमें स्वस्थ नहीं है तो बाकी सारी अचीवमेंट्स क्या है? तो दोस्तों हमें थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर हमें फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके कई फायदे होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं, होशियार हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं आज मिसिंग है, वो है मेंटल एक्सरसाइजेस, या अपने मन का ध्यान रखना या अपना ध्यान रखना। दोस्तों कुछ बात हम आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर होने के नाते या साइंटिस्ट होने के नाते या मेडिकल फील्ड से जुड़े होने के नाते कई बार हम अपने बॉडी के बारे में जानते हैं, बॉडी हमारी कैसे बनती है, बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन से साधन चाहिए, क्या क्या चाहिए, उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। कई लोग तो अपने साथ कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखते हैं, कुछ सॉफ्ट फ्रूट्स भी रखते हैं, ताकि वो टाइम पर उस शरीर को भोजन दे सके। दोस्तों इस शरीर का हम बहुत ध्यान रखते हैं और हमें रखना भी चाहिए, इतना कीमती है, इसमें अरबों खरबों के पार्ट्स लगे हुए हैं, पता है ना कीमत कितनी है? एक आंख कीमत कितनी है, एक किडनी कीमत कितनी है, दोनों किडनी कीमत मिला दिया जाए तो कई गुना बढ़ जाती है दोस्तों। इतने अरबों खरबों के पार्ट्स लगे हुए हैं इस शरीर में, इस मशीन में, जिसका हमें ध्यान तो रखना ही है। लेकिन दोस्तों अगर ड्राइवर ठीक नहीं है, जो इस शरीर को, इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है दोस्तों, तो कितना भी अच्छा मशीन हो, कितने भी अच्छे इसके पार्ट्स हो, शायद वो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा हम उस सॉफ्टवेयर की बात करना चाहेंगे। अभी हम थोड़ा हम आपको मेडिटेशन भी कराएंगे, ताकि आप थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी दिनचर्या में इसका पूरा लाभ ले सके। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है मन, दूसरी होती है बुद्धि, और तीसरे होते हैं हमारे संस्कार, या आम भाषा हम उसको व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, क्या है मेडिटेशन? सरल भाषा में मन, बुद्धि और संस्कार में संतुलन स्थापन करना, मन को शून्य कर देना नहीं, मन, बुद्धि और संस्कार में संतुलन स्थापन करना। जैसे दोस्तों आप सभी ने झूला जरूर झूला होगा, कभी ना कभी आपका मन भी करता होगा, ऊपर जाता है, नीचे आता है, आप उसको एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं, क्यों? क्योंकि संतुलन है उसमें दोस्तों। उसी प्रकार मन, बुद्धि और संस्कार में संतुलन बनाए रखना, इसको राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं। तो मन क्या है? मन हमारे विचार और भावनाएं हैं। मन का विचार और भावनाओं से बहुत गहरा संबंध होता है, हमारे विचार हमारे भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, और हमारी भावनाएं हमारे विचारों से जुड़ी हुई होती हैं। बुद्धि एक फिल्टर की तरह काम करती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज को मुझे उस फिल्टर से जाने देना है, किस चीज को हमें इसके यहीं पर स्टॉप कर देना है, और जब वो फिल्टर होके आता है, वो हमारे एक्शन में आता है, तो वो हमारे व्यक्तित्व और हमारे पर्सनालिटी बनते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको थोड़ी देर मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपके मन और आपके तन का भी ध्यान रखेगा। आप सभी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं डर की जो फीलिंग है वो महसूस यहाँ होती है, कहाँ, जहाँ आपका दिल होता है, हार्ट महसूस यहाँ होती है, पर डर यहाँ नहीं होता दोस्तों, डर यहाँ होता है, खुशी यहाँ होती है, और उसके जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं वो यहाँ महसूस होते हैं, गुस्सा यहाँ होता है और उसके फिजिकल इफेक्ट्स हमें यहाँ महसूस होते हैं। आप सोच के देखो दोस्तों, हमारे थॉट्स और इमोशंस का हमारे पूरे शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ी देर हम आप सभी के साथ मेडिटेशन करेंगे, तो आप सभी अलर्ट होके बैठ जाएं, अलर्ट होकर के, ताकि हम उसका पूरा लाभ ले सकें। और आप ध्यान रखिएगा, आप आंखें बंद भी कर सकते हैं या आधी खोल के भी रख सकते हैं या आंखें खोल के भी रख सकते हैं, पर ध्यान रखना है आपको कि आपको नींद ना आ जाए। तो जैसे हम अलर्ट बैठे हैं दोस्तों, ऐसे आप भी अलर्ट होकर के बैठ जाएं। जो जो हम संकल्प आपको देंगे, उन संकल्पों को आप विजुलाइज करें, फील करें और उस शक्ति को अनुभव करें। अपने मन को बाहरी विचारों से अलग कर लें। तथा अपने सांसों पर फोकस करें। महसूस करें सारे संसार की पॉजिटिविटी, मेरे सांसों के साथ, मेरे फेफड़े से होती हुई, मेरे ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल गई है। मेरे पूरे शरीर की कोशिकाओं में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे शरीर की, सेल, वो ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी, उसकी तरंगे हमारे शरीर के छोटी से छोटी कोशिकाओं तक पहुंच रही है। हमारी सभी इंद्रियां शांत और शीतल होती जा रही है। इंटरनल पीस की अनुभूति कर रहा हूं, डीप साइलेंस, महसूस करें इनर साइलेंस की। मेरे मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों सूक्ष्म इंद्रियां शांत और शीतल, मैं आत्मा भी चमकता हुआ सितारा मस्तक पर विराजमान, मेरे से चारों तरफ शांति की तरंगें फैल रही हैं। मेरे चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। विजुलाइज करें मेरे ऊपर सर्वशक्तिमान परमात्मा, हजार भुजाओं वाला देखें, वो हमारे बहुत करीब आ गए और अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। महसूस करें सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको हम माता, पिता, बंधु, सखा भी कहते हैं, उसने हमारे सर पर हाथ रखा है। महसूस करें मैं हमेशा भगवान की छत्र छाया के नीचे हूं। उसकी छत्र छाया जिसके ऊपर है वो निश्चिंत है। महसूस करें वो कह रहा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसी प्रकार विजुलाइज करें भगवान का हाथ मेरे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर है, मेरे पूरे घर पर भगवान की छत्र छाया है। अपने मन को हल्का कर दे और अपने परिवार के सदस्यों को भी ये महसूस कराएं कि सचमुच मुझे तो बस अपना रोल प्ले करना है। जो भी मुझे काम मिला हुआ है उसको अच्छे से प्ले करना है, उसमें अपना सब कुछ लगाना है। पर चिंता उस प्रेम सर्जन उस प्रेम ऑलमाइटी अथॉरिटी को समर्पित कर दें। महसूस करें कि स्वयं भगवान ने आपको गले लगा लिया है। आप भगवान की बाहों में हैं। अपने मन का सारा बोझ भगवान को समर्पित करते हैं। स्वयं हल्के हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। इसी फीलिंग के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा जो हमारे पास इतने कीमती हमारे शरीर में पार्ट्स हैं, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हमारा पूरा शरीर हो, उसकी देखभाल के साथ साथ मुझे अपना भी देखभाल करना, अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। इसी विश्वास के साथ हमारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप अपने जीवन में सफलता की सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचे। आपके जीवन में संसार की सारी खुशियां हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 8619937031।